سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لذت نماز عطا فرمائی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی لذت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمائی. رمضان شریف کی جو خصوصیات ہیں, ان خصوصیات میں سے صلاۃ التراویح بھی ہیں, وہ خود نماز ہے. لیکن اس نماز کا ذوق اور نماز کی وہ لذت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو, عاشقین کو عطا فرماتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو. کیونکہ جب انسان کو کے دل میں کسی کام کی محبت پیدا ہوتی ہے نا, پھر اس کام کے اندر جان سے محنت کرتا ہے, بلکہ جی جان سے محنت کرتا ہے. اور جب محبت نہیں ہوتی تو صرف جان چھڑاتا ہے, وہ اپنے سر کے اوپر سے بوجھ اتارتا ہے. اور اسی نماز میں لذت پیدا ہو جائے تو شوق سے اور محبت سے نماز پڑھے گا, تو دل میں محبت پیدا ہو جائے. اور ساتھ میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ نماز کے مسائل کی طرف بھی توجہ ہو, نماز کے مسائل بھی سیکھے. ایسے نہیں جیسے چاہے نماز پڑھ لے, ایسا تو نہیں ہے نا. اس کی اوقات رکھے گئے کہ ان اوقات میں پڑھو, اس طریقے سے پڑھو. ان تمام چیزوں کو سیکھنا بھی نہایت ضروری ہے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ نماز کا یہ بھی ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات اور سنتیں اور مستحبات, ان کو بھی سیکھے. کن باتوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, ان چیزوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اگر یہ باتیں معلوم نہیں ہوگی تو نماز کیسی رہے گی؟ بہت ضروری ہے. تو نماز کے فرائض وہ باتیں ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا, یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے ابھی, کہ اس میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. مثلا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, لوگ جہاز میں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لیتے, یہ عذر نہیں ہے. ایسے لوگوں کی نماز چاہے جہاز میں ہو, چاہے ریل گاڑی میں ہو, چاہے بس میں ہو, ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. اس میں دو کمی ہے. ایک کمی تو یہ ہے کہ کھڑے نہیں ہوتے. ایک کمی کیا ہے؟ کھڑے نہیں ہوتے. اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. ہاں اگر معذور ہے تو اور بات. صرف نفل نماز ایسی ہے جو بغیر کی کسی وجہ کے انسان بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے, کہ جی بیٹھ کے نماز پڑھنی, اچھا بھائی پڑھ لو نفل, لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. یعنی کھانے میں کھڑا گوشا نہیں ملے گا, دال روٹی ملے گی. نماز کا ثواب آدھا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ خرابی تو کیا ہے کہ کھڑے نہیں ہوتے. اور دوسری کمی یہ ہے کہ قبلے کی طرف نہیں ہوتے. बस कहीं जा रही है, रेलगाड़ी कहीं जा रही है, जहाज कहीं जा रहा है, अल्लाह का फुरू रही है, अल्लाह का नाम, अल्लाह हूँ, अल्लाह का नाम। जब एक दीन जब आता है वहीं अल्लाह गफूर रहीम भी है, शकूर हलीम भी है, जितनी अच्छी अच्छी चीजें सब है। तो भाई जब इतनी बात है तो अल्लाह रज़ाक भी तो है, कमाने न जा बैठा रहे रोज देने वाला, अल्लाह ताला औलाद भी देने वाला, शादी भी ना करे खुद ही दे देंगे। तो साहिबान सारी दुनिया के धंधे छोड़ के इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मर्द ही बच्चे पैदा करें, काम नहीं है ना कोई इनको। मोमिन का तो हाल है, उसको फुर्सत ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक उसे ऐसे मामूलात है, अल्लाह ताला की याद है, माँ बाप की खिदमत है, असाज़ा बुजुर्ग अपने मशाइख के पाव गुजारना है, जिक्रुल्लाह है, तिलावत है, कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख लिया, कोई दीन का काम है, फुर्सत ही नहीं इनके पास, फुर्सत है इसलिए उल्टी सीधी चीजों को तहकीक करते रहते। लगा माशाल्लाह इस तहकीक करने की कोशिश करने मर भी बच्चे पैदा करें। चलो सारी मेहनत करके बच्चा हमल भी ठहर गया, निकालेंगे कहां से? ये एक ही सुराख है, वो कहते हैं कराची की जबान में फटके हाथ में आ जाएगी। अब इस चक्कर में पड़े हैं, तो बहरहाल हुजूर का ख्याल रखें, तो नमाज में खड़े होना ये फर्ज है, फराइज़ इसको सीखे। अभी थोड़ा सा सब तारीफ करा रहा हूं, जैसे रुकू सजदे नमाज में फर्ज है, कुरान पाक का पढ़ना फर्ज है, कुछ बातें नमाज के अंदर वाजिबात होती है, वाजिब, और नमाज के वाजिब वो चीजें होती है कि अगर कोई वाजिब छूट गया लेकिन आखिर में सजदा साफ कर लिया तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मसलन एक आदमी नमाज जिस तरतीब से हम पढ़ते हैं ना, पहले खड़े होते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सीधा खड़े होते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, इसी तरह दूसरी रकात करते हैं, लेकिन दूसरी रकात के सजदे के बाद फिर बैठ जाते हैं, अगर तीन या चार रकात की नमाज हो तो अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हो जाते हैं, इसको तरतीब कहते हैं, ये नमाज की तरतीब है। अगर इस तरतीब के खिलाफ कर दिया, खड़ा होना था बैठ गया, तरतीब आगे पीछे कर दी, तो तरतीब खराब हो गई, आखिर में क्या करना होगा? सजदा साफ करना होगा। तो इसको क्या कहते हैं? सजदा साफ। तब वाजिब कहते हैं इसके छूट जाने से, सजदा साफ कर ले तो नमाज उसकी हो जाएगी। जैसे वित्र की नमाज है, वित्र की नमाज में जो तीसरी रकात में हम दुआ कुनूत पढ़ते हैं, कुनूत जो पढ़ते हैं ये वाजिब है। अगर कोई आदमी ने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत पढ़ी और दुआ कुनूत पढ़े बगैर वो रुकू में चला गया, अब क्या करे? आखिर में सजदा साफ कर ले, उसकी नमाज दुरुस्त है, सही ना? तो ये क्यों सजदा साफ कर ले? वाजिब था, ये है नमाज की वाजिब। ऐसे नहीं कि नमाज में वजू टूट गया, आखिर में सजदा साफ कर लिया। एक जाहिल ने ऐसे ही किया ना कि नमाज में वजू टूट गया, उसने आखिर में सजदा साफ कर दिया, नमाज को अगर नमाज होना ही है तो क्या है? वो तो उन दो आदमियों की भी हो गई, जो आदमी इफ्तार पार्टी खा के आ रहे थे, मस्जिद में पहुंचे तो नमाज तैयार थी, जल्दी से नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर निकले, उसने कहा शुक्र इफ्तार पार्टी बड़ी मजेदार थी, और शुक्र हमें नमाज भी मिल गई। अगर हम वजू के चक्कर में रहते तो नमाज छूट जाती। तो नमाज होगी नहीं इनकी, बोली। अब दो आदमी मस्जिद के बाहर खड़े बातें कर रहे थे, एक कह रहा था बगैर वजू नमाज हो जाती, वो कहता है बगैर वजू नमाज नहीं होती भाई, वजू करना जरूरी। एक साहब निकले, उन्हें देखा शक्ल से कुछ दीनदार मालूम, से भाई साहब मोदी साहब एक मसला हमारा हल कर देगा। भाई क्या बात है, कहीं ये कहते बगैर वजू नमाज हो जाती, मैं कहते नहीं होती, वजू करना जरूरी। मोदी साहब ने उससे पूछा भाई तुम्हें क्या दलील है कि बगैर वजू नमाज हो जाती है, उन्होंने दलील क्या, मैं भी पढ़ के आ रही। तो ये थोड़ी है तो नमाज होगी ना उसकी, होगी। अगर नमाज इसका नाम है अल्लाह, तो नमाज तो होगी। अगर यही नमाज है तो होगी ना, लेकिन जो नमाज है सलात है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह की इबादत पर समर्पित है, उसके लिए तो नाज तो है। तो नमाज की सुन्नतें वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका हुआ कि जिसके बगैर नमाज तो हो जाती है लेकिन नामुकम्मल नमाज है। अब बताइए इफ्तार पार्टी में न पकौड़ा है, न रोल है, न फ्रूट चाट है, न चटनी है, न शरबत है, सीधी सीधी खजूर और पानी रख दिया, ये भी कोई इफ्तार है? ये हम लोगों का उन आरत तो उससे खुश है। तो मैंने इस बात की जैसे आम है, आम मीठा ना हो, बिरयानी चटपटी ना हो, कभी भी बिरयानी, तो नमाज में सुन्नत के बगैर नमाज हो जाएगी, लेकिन मेरे दोस्तों तो कैसी नमाज होगी अगर सुन्नत ऐसे दोनों पांव बिल्कुल सीधे, ऐसा कबले की तरफ बिल्कुल सीधे, सीधा खड़ा होना चाहिए। बाकी लोग नमाज में ऐसे क्यों करते हैं, हाथ बांधे, जब हाथ हाथ हो तो हथेली का रुख कबले की तरफ ऐसे रखे, उंगली का रुख आसमान की तरफ हो, निगाह सजदे की जगह पर हो, और हाथ को उठाकर कान की नौ तक ले जाए, सीधा रखना चाहिए, ऐसे सीधे है ना, ऐसे रखे अल्लाह ऊपर के हाथ बांधो, तो इसको इधर रखा, ये तीन उंगलियों सामने, छोटी उंगली अंगूठे से ऐसे हल्का बना, ऐसे करके छोड़ दिया, नाक के नीचे बांधना, हाथ सुन्नत है, ये हो गया सुन्नत तरीका। जैसे सना पढ़ना सुन्नत है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक तबारक अस्मुका वतआला जद्दुक ला इलाहा गैरुक, इक्यावन सुन्नतें हैं सीखे भी। इसी तरह नमाज के मुस्तहबात क्या है, उमदा चीज है, जैसे निगाह सजदे की जगह पर रखे, ये नहीं कि नमाज में कभी उतर नहीं सकते, मकरूह है, नापसंदीदा बात है नमाज में ऐसे करना। मैं बोले नमाज में भी यूं कर रहा था ऐसा, ऐसे नमाज में कपड़े को दुरुस्त करना, अप टू डेट सब फजूल हरकत है, मकरूह है, नापसंदीदा बात है, ऐसे उनका नमाज हो, यहां तक कोई खुजली भी हो तो खुजली ना करना, ये भी अच्छा है। तो ये है चीजें कि जो भी नमाज को होगा उसी तरह अच्छा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना, मसलन ऐसा अच्छा लिबास हो जैसे किसी दावत को जाना हो, मान लो कि बादशाह की दावत हो, कैसा लिबास पहन के जाएगा, ऐसा लिबास पहन के जाएगा, ऐसा अच्छा लिबास में नमाज पढ़नी चाहिए। इसी तरह नमाज में वो बातें जिनसे नमाज टूट जाती है, मसलन आप खुजली किए जा रहे हैं, मुंछों को ताव दिए जा रहे थे जा रहे, अगला ये देखकर कोई अन्य आदमी समझेगा कि जैसे नमाज में पढ़ा, ऐसी बात जिसको देखकर समझे नमाज में पढ़ा उसे नमाज टूट जाती है। उसी तरह नमाज में खनखाना पकौड़ा फंस जाता ना, और नमाज में उसको निकालते इसे नमाज टूट जाती है। सिर्फ ईमान में काम कर सकता है, इमाम को चूंकि खराब करनी होती ना, वो कोई रास्ता क्लियर कर सकता है, उसको इजाजत है उसको आप पकौड़े खिलाए और वो क्लियर कर सकता है। बाकी मुक्तदी हजरात नमाज के बाद पकौड़े खाए, और नमाज इससे नमाज हो जाती है। तो ये सीखने की चीजें, किन किन बातों से नमाज छूट जाती है, ये सब सीखने की चीज है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, सीखे इससे नमाज मजेदार हो जाएगी, नमाज में कमाल पैदा होगा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।